बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये अस्सुफा ऑडियो लाइब्रेरी की आवाज़ है। मुलाहिज़ा कीजिए अशफाक अहमद ख़ान की तहरीर सिलसिला दौरे नबूवत के बच्चे से सखावत का दरिया, जो 32 सफहात पर मुश्तमिल है। पेशे लफ्ज़ अपनी हैसियत और मर्तबे के मुताबिक अल्लाह की राह में सभी कुछ ना कुछ ज़रूर खर्च करते हैं। इसमें जहाँ वसअत माली की अहमियत है, वहाँ वसअत कल्बी ज़्यादा अहमियत की हामिल है। आम तौर पर तो लोगों का वतीरा कुछ यूँ होता है कि बहुत मामूली रकम सखावत की नज़र करते हैं, ज़्यादा माल खर्च करते हुए डरते हैं। फ़िक्र फाके का खौफ दिलो दिमाग और हाथों पर गिरफ्त कर किए रखता है। गुर्बत और तंग दस्ती के अंदेशे वबाले जान बने रहते हैं। दूसरों पर खर्च करने की निस्बत अहल आयाल पर खर्च करने को तरजीह देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें खर्च करते हुए फ़िक्र फाके का कोई खौफ नहीं होता। इन्हें इस बात की कतई फ़िक्र नहीं होती कि वो खुद तंग दस्त हो जाएंगे। बेशक इनकी तादाद आटे में नमक के बराबर ही है, लेकिन है तो सही। इन्हीं में से एक वो थे जिन्हें सखावत का दरिया कहा गया। दयारे गैर यानी हबशा में हिजरत करके जाने वाले मुसलमानों में जिस बच्चे ने सबसे पहले जन्म लिया, वो यही थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, इसलिए नहीं कि वो उनके भतीजे थे, बल्कि ख़ुद उनकी ज़ात में बहुत सी सिफ़ात ऐसी थीं जिनके बिना पर उन्हें दूसरों की तवज्जो और मोहब्बत हासिल हो जाती थी। जो भी उनको देखता, उसका दिल बेख्तियार इस बात की शहादत देने लगता कि इस बच्चे की ज़ात में भलाई और नेकी की खूबियाँ नुमायाँ हैं। उनका अंदाज़ नश्त तो बर्खास्त ये जाहिर करता था कि आने वाले वक्त में कामयाबी और कामरानी उनके कदम चूमेगी। उनकी गुफ्तगू अक्ल व दानिश का मज़हर होती थी। वो बड़े मोअज़्ज़ज़ और सखी थे। अल्लाह की राह में बेदरी खर्च करते थे। तंगदस्ती फ़िक्र फ़ाके का खौफ कभी उनके करीब भी नहीं फटकता था। उनके वालिद को भी मिस्कीनों की बहुत ज़्यादा मदद करने पर अबुल मसाकीन का खिताब मिला था। ये खूबी उनमें भी नुमाया थी और इसी बिना पर इनका नाम बहरिल जौद यानी सखावत का दरिया पड़ गया। फयाजी और मेहमान नवाजी की खूबियों के साथ साथ वह बहुत इबादत गुजार भी थे। दिन को रोज़ा रखते और रात अल्लाह की इबादत में गुजारते। ज़माने ने उनकी सखावत, इबादत गुजारी और बर्दबारी को तस्लीम किया। सखावत का ये दरिया कौन थे, इनका तस्करा आइंदा सफहात में देखिए। वस्सलाम, अब्दुल मालिक मुजाहिद। आसमान पर सितारे टिमटिमा रहे थे। चांद के बगैर वो कितने अधूरे लग रहे थे। इनकी चमक धमक और झिलमिलाहट ज़मीन पर फैली तारीकी को दूर करने में नाकाम साबित हो रही थी। ज़मीन पर फैली अंधेरे की चादर में चंद हेले हरकत कर रहे थे। इनके अंदाज़ में डर, खौफ और अंदेशा नुमाया था। चंद कदम चलकर वो रुक कर पीछे की जानिब देखने लगते, फिर मुतमईन होकर दोबारा सफ़र शुरू कर देते। शायद उन्हें किसी के ताकुब का अंदेशा था। जिस रास्ते पर वो सफ़र कर रहे थे, वो नहायत दुश्वार गुजार और इंतहाई पुरख़तर रास्ता था। कहीं बुलंद बाला पहाड़ थे तो कहीं रेतीले मैदान, कहीं रास्ते में खारदार झाड़ियाँ बिछी थी तो कहीं चटियल संगलाख मैदान। उन्हें समंदर तक पहुंचना था, लेकिन समंदर तक पहुंचकर भी इनके सफ़र को ख़त्म नहीं होना था, बल्कि वहां से इन्हें एक नए और ख़तरों से भरपूर सफ़र का आगाज़ करना था, एक लंबे और तवील सफ़र का आगाज़। इन मुसाफिरों को सफ़र का आगाज़ के कितना ही वक्त बीत चुका था और अब इनकी मंजिल करीब थी। रात की स्याही ख़त्म होने वाली थी कि इन्हें समंदर की पुरशोर लहरों की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। इनके चेहरों पर ज़िंदगी की नई लहर दौड़ गई। मुसलसल सफ़र ने इन्हें निढाल और बेजान सा कर दिया था, लेकिन समंदर को अपने सामने देखकर इनकी सारी थकावट दूर हो गई। जिस मकाम पर वो लोग पहुँचते थे, उसका नाम शोएबा था। यहीं से उन्होंने अपने नए सफ़र का आगाज़ करना था। सफ़र के लिए उन्होंने तिजारत के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कश्तियों का इंतज़ाम किया था। ये वो ज़माना था जब कश्तियाँ अपनी इब्तदाई शक्ल में थीं। आज के ज़माने की कश्तियों की तरह मज़बूत और ताकतवर नहीं थीं। उस वक्त के लिहाज से वो भी गनीमत थीं। वो लोग कश्तियों में सवार हो गए। इस तरह एक नया सफ़र शुरू हो गया। समंदर की बुलंदोबाला लहरों पर कश्तियाँ खिलौनों की मानिंद उछल रही थीं। तूफानी लहरों के दोश पर बहती इन कश्तियों का रुख जनूब की तरफ था, अफ्रीका की तरफ, जहाँ इन्हें मुल्क हबशा पहुँचना था। मुसलसल सफ़र करते हुए वह बाबुल मंदब से ऊपर चढ़े, जो जज़ीरा अरब और अफ्रीका के साहिलों के दरमियान बहर अहमर में नहायत तंग जगह है, और समंदर को अबूर करते हुए अफ्रीका की तरफ चले ताकि अपनी नई मंजिल हबशा पहुँच सकें। हबशा का हुक्मरान निजाशी एक इंसाफ पसंद हुक्मरान था। वो ना तो किसी पर जुल्म करता था और ना जुल्म करने वालों को पसंद करता था। अरब के खित्ते से हिजरत करके आने वालों को उसके यहाँ पनाह मिल गई और वो बेखौफ व ख़तर ज़िंदगी गुजारने लगे। आप यकीनन जान चुके होंगे कि हिजरत करके आने वाले ये लोग कौन थे और इन्हें अपना मुल्क छोड़कर हिजरत करने की ज़रूरत क्यों पेश आई थी। ये वो दौर था जब खित्ता अरब पर नबुवत का चांद तुलू हो चुका था। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी रिसालत का ऐलान कर चुके थे। जिन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर इस्लाम कबूल किया, कुफ्फार ने इनको शदीद अज़ियतें दीं, इनको तरह तरह की सज़ाएं दीं, इन पर अरसा हयात तंग कर दिया, हत्ता कि वो ज़िंदगी से आजिज़ आ गए। ये सूरत हाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तकलीफ़ का बाइस थी। इसीलिए जब मामला इंतहाई शिद्दत अख्तियार कर गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान होने वाले को हबशा की तरफ हिजरत की इजाज़त दे दी। चुनाचा मुसलमानों ने बचते बचाते रात के अंधेरे में हिजरत के लिए अपनी ही सरजमीन मक्का को छोड़ दिया। मक्का, जहाँ तारीखी और अबदी सच्चाई का मजहर बैतुल्ला था, अपने घर बार, माल मवेशी, हर चीज़ उन्होंने अल्लाह की राह में हिजरत के लिए छोड़ दी थी। इन हिजरत करने वालों में सैयदना उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हो, इनकी ज़ौजा मोहतरमा सैयदा रुकैया रदी अल्लाह ताला अन्हुमा, जो कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी थीं, और सैयदना जाफ़र बिन अबी तालिब रदी अल्लाह ताला अन्हो भी शामिल थे। जब इन लोगों ने अपने कदम हिजरत की खातिर मक्के से बाहर निकाले तो कुरैश के मुशरिकीन बहुत तिल मिलाए। वो तो इस्लाम कबूल करने वालों को तड़पा तड़पा कर अज़ियतें दे देकर अपने आबा व अजदाद के मजहब की तरफ फेरना चाहते थे, इन्हें अपने कब्ज़े में रखना चाहते थे। इसलिए जैसे ही उन्होंने सुना कि मुसलमान हिजरत करके गए हैं, वो इन्हें हिजरत से रोकने के लिए निकल पड़े। लेकिन इन्हें देर हो चुकी थी। वो समंदर के किनारे उस वक्त पहुँचे जब मुसलमान कश्तियों पर सवार होकर निगाहों की हदूद से दूर जा चुके थे और काफ़ी अफसोस मिलते हुए पलट आए। कुफ्फारे मक्का ने इसके बाद बहुत कोशिश की कि हिजरत का ये सिलसिला रुक जाए, लेकिन इस्लाम कबूल करने वाले लोग या के बाद दीगरे मौका मिलते ही ग्रुप की शक्ल में हबशा की तरफ हिजरत कर जाते। अब कुफ्फार ये सोचने लगे कि मुसलमान आखिर हबशा ही क्यों हिजरत कर रहे हैं। बहुत गौर व फिक्र के बाद ये बात समझ आई कि वहाँ का हुक्मरान निजाशी इनको यकीनन खुश आमदीद कहता होगा और वो इनके लिए दिल में नरम गोशा रखता होगा, तभी ये लोग वहाँ का रुख कर रहे हैं। उन्होंने फ़ैसला किया कि निजाशी चूँकि एक ईसाई हुक्मरान है, इसको मुसलमानों के ख़िलाफ़ करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, इन्हें वहाँ जाना चाहिए। इस मकसद के लिए उन्होंने सबसे पहले निजाशी के दरबारी काहिनों से राबता किया। काहिन नजूमी या गैब की बातें बताने का दावा करने वाले को कहते हैं। इन काहिनों को कीमती तहफ़ से नवाजा गया, जिसके बिना पर वो कुफ्फार का साथ देने पर आमादा हो गए। कुफ्फार का वफ्द उम्र बिन आस और अब्दुल्ला बिन अबी रबिया पर मुश्तमिल था। ये दोनों बड़े ज़हीन और फसीह बलीग थे। इन दोनों ने काहिनों की मदद से निजाशी को इस बात पर आमादा करने की कोशिश की कि वो मुसलमानों को अपने मुल्क से निकाल दे, लेकिन निजाशी एक अक्लमंद और खुले दिल का मालिक शख्स था। कुफार के दलाइल सुनकर इसने इसरार किया कि मुसलमानों को भी इन दलाइल के जवाब देने का मौका मिलना चाहिए। चुनाचा मुसलमानों ने कुफार के इल्ज़ाम को रद्द करने और अपने दीन की हकीकत वाज़े करने के लिए जाफ़र बिन अबी तालिब रदी अल्लाह ताला अन्हो को मुंतखब किया। उन्होंने दरबार में निजाशी के सामने खड़े होकर वाज़े किया कि इनका दीन गालिब और कारसाज़ क़ुव्वत अल्लाह ताला की इबादत की दावत देता है, गुनाहों में डूबे हुए को नेकी के रास्ते पर चलने की तरगीब देता है। इस्लाम के अकायद उसी मंबा से फूटते हैं जिससे सैयदना ईसा अलैहि सलाम ने रहनुमाई हासिल की। सैयदना जाफ़र रदी अल्लाह ताला अन्हों ने निजाशी के सामने सूरह मरियम की कुछ आयात की तिलावत भी फरमाई। निजाशी ने यह आयात सुनकर कहा, यकीनन ये वही तालीम है जिसे लेकर मसीह और मूसा अलैहि सलाम तशरीफ़ लाए थे। उसके बाद उसने उम्र बिन आस और अब्दुल्ला बिन अबी रबिया को वापस जाने का हुक्म दे दिया। यूं कुफार को नाकामी का सामना करना पड़ा। ये जाफ़र बिन अबी तालिब रदी अल्लाह ताला अन्हो सैदना अली मुर्तज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हो के सगे भाई और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई हैं। वो सबसे पहले ईमान लाने वालों में से थे। नहायत मुत्तकी परहेज़गार और सखी थे। उन्होंने अपनी बीवी अस्मा बिनते उमैस रदी अल्लाह ताला अन्हुमा के हमरा हिजरत की थी। हबशा में क़याम के दौरान इनके यहाँ अब्दुल्ला मोहम्मद और औन नामी बच्चे पैदा हुए। जब अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश हुई तो इसके कुछ दिन बाद निजाशी के यहाँ भी बेटा पैदा हुआ। उसने सैयदना जाफ़र रदी अल्लाह ताला अन्हु के यहाँ पैगाम भेजा कि आपने अपने बेटे का नाम क्या रखा है। सैयदना जाफ़र रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, बेटे का नाम बताया तो उसने भी अपने बेटे का नाम अब्दुल्ला रख लिया। उसे अस्मा बिनते उमैस रदी अल्लाह ताला अन्हुमा ने दूध भी पिलाया। इसी बिना पर इन्हें अहले अफशा के यहाँ एक ख़ास मकाम हासिल हो गया था। ज़िंदगी में अमन व सकून हो, अजनबी सरजमीन के अजनबी लोग गले लगाकर अपनों का सा प्यार दें तो आदमी सारी मुश्किलात और मसाइब भूल जाता है। अलबत्ता एक कसक, एक तड़प उसके दिल में हमेशा जागती रहती है। वो है अपने वतन से मोहब्बत। सैयदना जाफ़र बिन अबी तालिब रदी अल्लाह ताला अन्हो और दीगर सहाबा कराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन भी दिल में वापसी की शदीद ख्वाहिश रखते थे। इनकी ये ख्वाहिश फ़तह खैबर के मौके पर पूरी हुई। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से वो खैबर आ पहुँचे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना जाफ़र रदी अल्लाह ताला अन्हो को दोनों आँखों के दरमियान बोसा दिया और उनकी आमद पर मसर्रत का इजहार उन अल्फाज में किया, मुझे मालूम नहीं जाफ़र के आने की ज़्यादा खुशी है या खैबर फ़तह होने की। सैयदना जाफ़र रदी अल्लाह ताला अन्हो ने जंगे मौता में शहादत का रुतबा हासिल किया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी शहादत की खबर इनकी बीवी को दी तो साथ ही ये खुशखबरी भी सुनाई कि यकीनन अल्लाह ताला ने जाफ़र रदी अल्लाह ताला अन्हो के दो पर लगा दिए हैं, वो जन्नत में इन परों के साथ उड़ते फिरते हैं। सैयदना जाफ़र रदी अल्लाह ताला अन्हो के लाडले बेटे अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हो से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो इनके चचाजाद भाई का बेटा था, बल्कि ख़ुद इनमें बहुत सी ऐसी सिफात थीं जिनके बिना पर वो सबकी तवज्जो और मोहब्बत हासिल कर लेते थे। जो शख्स भी अब्दुल्ला बिन जाफ़र रदी अल्लाह ताला अन्हुमा को देखता तो इसका दिल बेख्तियार इस बात की शहादत देने लगता कि इस बच्चे की ज़ात में भलाई और नेकी की खूबियाँ नुमाया हैं। जो इनकी गुफ्तगू सुन लेता वो पहचान लेता कि वो उम्दा अक्ल व दानिश के मालिक हैं। एक दिन अबू सुफियान रदी अल्लाह ताला अन्हो अपनी बेटी उम्मे हबीबा रदी अल्लाह ताला अन्हुमा के पास आए। उम्मे हबीबा रदी अल्लाह ताला अन्हुमा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजाए मोहतरमा थीं। उस वक्त उनके पास अब्दुल्ला बिन जाफ़र रदी अल्लाह ताला अन्हुमा भी मौजूद थे। इन्हें देखकर अबू सुफियान रदी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, ऐ मेरी प्यारी बेटी, इस लड़के से सखावत की महक उठ रही है, इज्जत व शर्फ चमक रहा है और शर्म व हया झलक रही है। सैयदा उम्मे हबीबा रदी अल्लाह ताला अन्हुमा ने पूछा, अब्बा जी आपके ख्याल में ये भला कौन है? अबू सुफियान रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अपने खसाइल खूबियों से तो ये हाशमी नज़र आता है। सैयदा उम्मे हबीबा रदी अल्लाह ताला अन्हुमा ने फिर पूछा, बनु हाशिम में से भला ये कौन है? अबू सुफियान रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अगर इसने जाफ़र के यहाँ जन्म नहीं लिया तो मैं इसे वादिय मक्का को अपनी शोहरत से ढांप लेने वाला शुमार नहीं करता, यानी ये मक्के में मुझसे ज़्यादा शोहरत नहीं पा सकता। सैयदा उम्मे हबीबा रदी अल्लाह ताला अन्हुमा ने फरमाया, ये जाफ़र रदी अल्लाह ताला अन्हों का बेटा है। ये सुनकर अबू सुफियान रदी अल्लाह ताला अन्हों ने कहा, कोई फ़ौत होने वाला आज तक ऐसा जानशीन छोड़कर नहीं गया। अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हों अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुजारते, जिसके नतीजे में इन्हें भी ज़्यादा तवज्जो और मोहब्बत मिलती। ख़ास तौर पर वालिद की वफ़ात के बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त और भी बढ़ जाती। लोगों ने भी देखा था कि सैयदना जाफ़र रदी अल्लाह ताला अन्हों की शहादत वाले दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हों का हाथ पकड़ा और उसके सर पर अपना हाथ फेरते रहे, हत्ता के मिंबर पर चढ़े और अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हों को मिंबर की नीचे वाली सीढ़ी पर बिठा लिया और लोगों को इनके बाप की वफ़ात की खबर दी। अब्दुल्ला बिन जाफ़र रदी अल्लाह ताला अन्हुमा की हमेशा ये ख्वाहिश और कोशिश रहती थी कि नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो का मरकज़ बने रहें। इनकी क़ुर्बत की तमन्ना उन्हें हमेशा साथ साथ रखती। वो कहते हैं कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे सवारी पर अपने पीछे बिठा लिया और चुपके से मुझे एक बात कही जो मैं लोगों में से किसी को नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो सिर्फ मेरे लिए थी। अपने पीछे सवारी का शर्फ बख्शा और अपने साथ किसी बात में चुपके से शरीक करना इस बात की निशानदेही करता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में इनका एक ख़ास मकाम था और वो बहुत ज़्यादा क़ुर्ब रखते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा सफ़र से वापस आए तो सैयदना हसन रदी अल्लाह ताला अन्हो या हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो के साथ उन्हें भी पीछे सवार कर लिया। इस तरह तीनों एक ही जानवर पर सवार होकर मदीने में दाखिल हुए। अब्दुल्ला बिन जाफ़र रदी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बात फरमाते सुना, मुझे वो बात सुर्ख ऊँटों से ज़्यादा महबूब है। सुर्ख ऊँटों से ज़्यादा महबूब है। सुर्ख ऊँट बड़े कीमती होते हैं, यानी कीमती ऊँटों से ज़्यादा महबूब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाफ़र मेरी जिसामत और अखलाक में सबसे ज़्यादा मेरे मुशाबह था और ए अब्दुल्ला, तमाम मखलूक में सबसे ज़्यादा तुम अपने बाप से मुशाबे हो। गालिबन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान का मकसद ये था कि तुम शक्लो सूरत और अखलाक में मेरी मुशाबत रखते हो। इस क़ुर्बत और मकाम की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हो के लिए दुआ किया करते थे, ए अल्लाह जाफ़र के अहलो आयाल में खलीफा बना दे और अब्दुल्ला के सौदे में बरकत फरमा दे। एक मरतबा सैदना अब्दुल्ला बिन जाफ़र रदी अल्लाह ताला अन्हुमा ने गैर आबाद बंजर ज़मीन ख़रीद ली। ज़मीन ख़रीदने के बाद इसमें 2 रकात नमाज पढ़ी और दुआ की। इनके सजदे की जगह से एक चश्मा फूट पड़ा और तमाम ज़मीन इस चश्मे की बदौलत ज़रख़ेज़ और शादाब हो गई। ये सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का असर था। सैयदना अब्दुल्ला बिन जाफ़र रदी अल्लाह ताला अन्हुमा बड़े मोअज़्ज़ज़ और सखी थे। अल्लाह की राह में ऐसे शख्स की तरह खर्च करते थे जिसे फ़क्र व फ़ाक़े का कतन खौफ ना हो, यानी अल्लाह की राह में खर्च करते हुए इन्हें इस बात की बिल्कुल फ़िक्र नहीं होती थी कि वो खुद तंग दस्त हो जाएंगे। और आप ऐसे क्यों ना होते, आपके वालिद को मिस्कीनों की बहुत ज़्यादा मदद करने पर अबुल मसाकीन यानी मिस्कीनों का बाप का खिताब मिला था। सखावत की आदत आप में भी इसी तरह थी। कहा जाता है कि अहद इस्लाम में अरबों के यहाँ सखावत के लिहाज से 10 आदमी मशहूर थे। हिजाज के सखी लोगों में अब्दुल्ला बिन जाफ़र, अब्दुल्ला बिन अब्बास और सईद बिन आस रदी अल्लाह ताला अन्हुमा थे। लेकिन इन तमाम लोगों में अब्दुल्ला बिन जाफ़र रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से ज़्यादा फ़याज़ और सखी कोई नहीं था। इसी सखावत की वजह से इनका नाम बहरल जौद यानी सखावत का दरिया पड़ गया। एक मरतबा एक देहाती मरवान के पास गया। मरवान ने कहा, हमारे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, तुम अब्दुल्ला बिन जाफ़र रदी अल्लाह ताला अन्हुमा के पास जाओ, वो तुम्हारी इमदाद करेंगे। चुनाचे इस देहाती ने सैदना अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हो के घर का रुख किया और इनकी खिदमत में अशार पेश किए, जिनका तर्जुमा कुछ यूं है। इब्ने जाफ़र रदी अल्लाह ताला अन्हुमा नबूवत के अहले बैत में से हैं। मुसलमानों के लिए अहले बैत की दुआएं तहारत व पाकीज़गी हैं। ऐसे शहीद के फर्जंद, आज आप जैसा कोई नहीं है जिससे मैं उम्मीद करूं। सो आप मुझे यूं खाली हाथ ना छोड़ें कि मैं सहरा में मारा मारा फिरता रहूं। देहाती के ये अशआर सुनकर सैयदना अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, तेरी परेशानी का बोझ ख़त्म हो गया है, यहाँ सामान से लदा हुआ ऊँट ले लो, ये मैंने 1,000 दिनार के इवज़ ख़रीदा है। एक मरतबा एक आदमी इब्ने अबी फ़ख्र अपना जानवर बेचने के लिए निकला। रास्ते में अब्दुल्ला बिन जाफ़र रदी अल्लाह तआला अन्हुमा के पास से गुज़रा तो उन्होंने पूछा, क्या इसे बेचोगे? उसने कहा, नहीं, लेकिन अल्लाह की कसम ये तुम्हारे लिए है। इब्ने अबी फ़ख्र इतना कहकर उस जानवर को वहीं छोड़ गया। कुछ दिनों के बाद रात के वक्त इसके दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने कुछ मज़दूरों को माल उठाए देखा। उसने हैरत से पूछा, तुम कौन हो और किस इरादे से आए हो? उन्होंने कहा, हम इब्ने जाफ़र रदी अल्लाह तआला अन्हुमा के हाँ से आए हैं। इब्ने अबी फ़ख्र ने कहा, तुम क्या चाहते हो? उसने अभी अपनी बात मुकम्मल नहीं की थी कि मज़दूरों ने इसके सामने गंदम, जैतून, कपड़े और कुछ दूसरा माल लाकर ढेर कर दिया। ये था एक मामूली जानवर के एवज़ दिया जाने वाला फ़याजी से भरपूर मुआवजा। एक आदमी ने आपकी मद्दाह सताइश की तो आपने इसे एक ऊंट, घोड़ा, कपड़े और दरहम व दिनार दिए। सैयदना अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु से कहा गया कि आप उस सयाह फाम शख्स को इतना माल व मता दे रहे हैं। उन्होंने फरमाया, अगर वो सिया है तो इसके बाल तो सफ़ेद हैं, यानी उम्र रसीदा है। दरअसल वो अपनी बात की वजह से इस माल का बल्कि इससे कहीं ज़्यादा का हकदार है जो इसे मिला है। हमने तो इसे सिर्फ वही चीज़ दी है जो बोसीदा और फना हो जाएगी। उसने हमें मद्दा और सताइश और तारीफ दी जो बयान की जाएगी और हमेशा बाकी रहेगी। सैयदना अब्दुल्ला बिन जाफ़र रदी अल्लाह तआला अन्हुमा बेहतरीन मेहमान नवाज थे। इनकी मेहमान नवाजी के हवाले ही से कहा गया, ए इब्ने जाफ़र रदी अल्लाह तआला अन्हुमा, यकीनन आप बेहतरीन नौजवान हैं। रात को आने वाला जब आए आप इसका बेहतरीन ठिकाना है। फ़याजी और मेहमान नवाजी की खूबियों के साथ साथ सैयदना अब्दुल्ला बिन जाफ़र रदी अल्लाह तआला अन्हुमा बहुत इबादत गुजार थे। वो दिन को रोज़ा रखते और रात अल्लाह की इबादत और इससे राज और न्याज में गुजारते। सखावत का ये दरिया जब तक ज़िंदा रहा, ज़माना इसकी फ़याजी, सखावत, इबादत गुजारी और बुर्दबारी के चर्चे करता रहा। मौत हर जी रूह का मुकद्दर है, जो इस दुनिया में आया है उसने जाना भी है। सन 80 हिजरी में इनकी वफ़ात हुई। ये वही साल था जब वादी मक्का में तबाकुन सैलाब आया था। इस साल का नाम जुहाफ यानी तबाही मचाने वाला रखा गया, क्योंकि ये तबाकुन सैलाब हाजियों और ऊँटों को इनके ऊपर लदे हुए सामान समेत बहा ले गया था। जब सैयदना अब्दुल्ला बिन जाफ़र रदी अल्लाह तआला अन्हुमा की वफ़ात हुई तो उस वक्त खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान की तरफ से अबान बिन उस्मान रहमतुल्लाह अलैह मदीने मुनव्वरा के अमीर थे। सो वो उनके गुस्ल व कफन के वक्त हाजिर हुए। अबान बिन उस्मान रहमतुल्लाह अलैह ने दो सतूनों के दरमियान से आपकी चारपाई उठाई और बकी कब्रिस्तान का नाम में रखने तक कंधा दिए रखा। गम की वजह से आंसू और इन आंसू इनके रुखसारों से बह रहे थे और इनके लबों से ये अल्फाज निकल रहे थे, ए अब्दुल्ला, अल्लाह की कसम, आप बेहतरीन थे, आप में कोई बुराई नहीं थी, आप साहिब शराफत, नेक और सुलह रहमी करने वाले थे। नमाज जनाजा भी अमीर मदीना ने पढ़ाई। बहुत से शायरों ने आपकी वफ़ात पर मरसिए कहे। इन अशार में से दो उम्दा अशार जिनका तर्जुमा ये है, अल्लाह ताला के अपनी मखलूक को उठाने तक कयाम करने वाले, तुम्हारी मुलाकात की उम्मीद नहीं की जाती, अगरचा तुम करीब ही हो, आप हर दिन रात बोसीदगी में भरते जाएंगे, जैसे जैसे आप बोसीदा होते जाएंगे, यानी दिन ज़्यादा गुजरते जाएंगे, इसी तरह आप भुला दिए जाएंगे, जबकि आप महबूब हैं। इसी तरह सरजमीन हबशा में मुसलमानों के हाँ सबसे पहले पैदा होने वाले अब्दुल्ला बिन जाफ़र रदी अल्लाह तआला अन्हुमा फ़ौत हो गए। दो परों वाले के फ़र्जंद फ़ौत हो गए। वो शख्सियत दुनिया से कूच कर गई जिसने 7 साल की उम्र में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत की। वफ़ात के वक्त सैदना अब्दुल्ला बिन जाफ़र रदी अल्लाह तआला अन्हुमा की उम्र 90 साल थी। सखावत की महक साहिब दिल लोग महसूस कर लेते हैं। सखावत का ताल्लुक है भी दिल से। दिमाग हाथ को रोकता है, टोकता है। दिल दरिया दिली पर आमादा करता है। अमीरी में सखावत बड़ी बात नहीं, तंगदस्ती में सखावत असल खूबी है। फ़िक्र फाके के अंदेशे जाल बनकर आदमी को जकड़ लेते हैं। अमीर को तंगदस्ती का खौफ आन लेता है। इन अंदेशों और खौफ से बेनियाज होकर सखावत करना ही असल चीज़ है। यहाँ पार्ट नंबर 5 मुकम्मल हुआ। आगे की तफसील अगले पार्ट में जानी है। जज़ाकअल्लाह।